ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त को लेकर सहमति बन गई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया कि इस समझौते से नियंत्रण रेखा से सैनिकों की वापसी हो सकती है और 2020 में शुरू हुए तनाव का समाधान मिल सकता है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच विस्तृत चर्चा के बाद सीमा क्षेत्रों पर गश्त व्यवस्था पर ये सहमति बनी है। रूस की सेना में लड़ रहे भारतीयों की वापसी के मुद्दे पर विदेश सचिव ने कहा कि करीब 85 भारतीय स्वदेश लौट आए हैं और करीब 20 लोग अभी भी वहीं हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में उच्चतम स्तर पर चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल रूस रवाना होंगे। श्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर जा रहे हैं। सम्मेलन का विषय न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सशक्त करना है। नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिश्रा ने कहा कि भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है और इसकी स्थापना के बाद से सभी गतिविधियों में शामिल हुआ है। श्री मिश्रा ने कहा कि भारत ब्रिक्स के लिए बहुत महत्व रखता है और इसके योगदान ने आर्थिक विकास, सतत विकास तथा वैश्विक शासन सुधार जैसे क्षेत्रों में ब्रिक्स के प्रयासों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विदेश सचिव ने कहा कि सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बैठकों में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नशीले पदार्थों के व्यापार, साइबर अपराध, घुसपैठ, आतंकवाद और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से अशांति फैलाने के प्रयास जैसे खतरे देश के सैनिकों के दृढ़ संकल्प के सामने नहीं टिक सकते। नई दिल्ली में पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए श्री शाह ने कहा कि संसद द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले ही शुरू हो चुका है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए ई श्रम पोर्टल शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक निर्बाध पहुंच सुलभ करेगा। उन्होंने श्रमिकों से पोर्टल पर पंजीकरण कराने और उनके लाभ के लिए बनाई गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया। भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल नमो भारत ने आज अपने परिचालन का 1 वर्ष पूरा कर लिया है। आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने नमो भारत ट्रेन में यात्रा की और दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, RRTS कॉरिडोर के प्रमुख स्टेशनों का दौरा किया। श्री मनोहर लाल ने कहा कि गाजियाबाद, साहिबाबाद और आसपास के क्षेत्रों में आवागमन को आसान बना दिया गया है। नमो भारत ट्रेन के परिचालन के पहले वर्ष में 40 लाख से अधिक लोग यात्रा कर चुके हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के अध्यक्ष प्रोफेसर तान एंग चे के साथ चर्चा की। श्री प्रधान ने कहा कि ये चर्चा ज्ञान के आदान प्रदान के लिए मौजूदा अवसरों के प्रयोग और शिक्षा तथा अनुसंधान से जुड़े सहयोग को बढ़ाने पर केंद्रित थी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संस्थान विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग से कई उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने सभी 2 और चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी ने एकमात्र सीट के लिए आज उम्मीदवारों की घोषणा की। सरयू राय जमशेदपुर पश्चिम से और राजा पितर तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार होंगे। चतरा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी के जनार्दन पासवान को टिकट दिया गया है। इन तीनों सीटों पर पहले चरण में 13 नवम्बर को मतदान होगा। NDA के सीट बंटवारे के अंतर्गत दोनों दलों को कुल 3 सीटें दी गई हैं। भीषण चक्रवाती तूफान दाना के बृहस्पतिवार की रात को लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पुरी और सागर द्वीप के बीच उत्तरी ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल के समुद्र तट को पार करने की आशंका है। इस बीच ओडिशा सरकार तटीय जिलों के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की तैयारी कर रही है। मछुआरों को कल तक समुद्र से वापस लौटने को कहा गया है। मौसम विभाग ने बुधवार से शुक्रवार तक अधिकांश तटीय जिलों और भीतरी ओडिशा के कुछ जिलों में अत्यधिक तेज वर्षा की आशंका जताई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगी। जल शक्ति मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ राज्य, जिला, ग्राम पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय, जल उपयोगकर्ता संघ और सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज सहित 9 श्रेणियों में 38 विजेताओं की घोषणा की है। घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 73 अंक कम होकर 81,180 पर और निफ्टी 112 अंक की गिरावट के साथ 24,741 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।